All right, so महाराज जी इसके लिए रहने के
कल्याण करते चले जाने। तो आज के दिन हमारे स्थिति का आविर्भाव है, उसके संबंध में विभिन्न वक्ता लोग बोले, हम भी हम इससे बोले, हमने बोला सबसे पहले मैं चाहिए कुछ बोले थोड़ा सा महाप्रभु अपने परिकरों के साथ में आए, उसी प्रकार से प्रभुपाद अपने सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी में भी कि अपने बहुत से परिकरों के साथ सुना था। इतनी जल्दी विश्व में सारे विश्व में प्रचार होना बड़ा भारी कठिन था। उनके साथ में जो जो उनके परिकर लोग आए उनमें हमारे गुरु जी मित्रीला प्रवेशम विष्णुपाद संस्कृति प्रज्ञान विश्व गोस्वामी महाराज अन्यतम थे। जैसे उनके समय में प्रभुपाद जी के समय में परम पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, परम पूज्यपाद वन महाराज जी, परम पूज्यपाद मायापुरेश महाराज जी, पूज्यपाद सौती महाराज जी, वैखानस महाराज जी, जागावर महाराज और भक्ति नेमी महाराज परम पूज्यपाद वैखानस महाराज, ये सब तो पुरानो और नए में भी जिनों को आप लोगों ने देखा उनमें हमारे पूज्यपाद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी अभी पीछे जूनियर, वो लोग जूनियर है, पूज्यपाद पुरी महाराज जी, भक्ति मोहन कमल मधुसूदन महाराज जी, परम पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जी, भगवान का नाम लिया ये सब लोग थे और गिरी महाराज जी परमहंस महाराज जी हम लोग का यही तो भाग्य रहा कि और कुछ भजन हुआ चाहे नहीं हुआ इन महापुरुषों का दर्शन और सेवा करने का सुयोग मिला। गुरु महाराज जी को ये सभी लोग बड़ा सम्मान देते गुरु महाराज जी अभी बतलाया ब्रह्मचारी जी ने भी गुरु के प्रति अगाध निष्ठा थी। इसको एक स्वर से समस्त गौड़ीय हमारा शाश्वत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इसको मानता है। प्राण काबू होने रखा गुरु सेवा के लिए। जब मठ में आए तो उस समय में मठ के अंदर में मायापुर में नियों का मुस्लिमों का कब्र गा था जहाँ प्रभुपाद की समाधि है, यहाँ पर चंद्रशेखर भवन है, यहाँ पर गोर किशोरदास बाबाजी महाराज जी का की समाधि इत्यादि है। ये सब मुसलमानों का कब्र गा था। गुरु महाराज जी ने एक दिन में ही सबको उड़ा दिया रात में ही। और वहाँ पर बड़े बड़े आम के वृक्ष, कटहल के वृक्ष, केले के पेड़ और सब लगा करके उसका सुंदर एकदम बगीचा बना दिया। मुसलमान ने कहा कि ये आप क्या कर दिया। मैंने कहा कि इसको अच्छी तरह से बना रहा हूँ, तुम्ही लोगों का ये रहेगा। और रात में उड़ा करके और तब तक पुलिस में खबर गई, आईजी डीआईजी सब लोग आए देखा कि ये तो बहुत पुराना बगीचा है। एक दिन अंदर में सब खपत कर दिया। ये किसी का साहस नहीं था ये करने का। मुसलमान से विशेष करके बंगाल में मुसलमान लोग बहुत भगवान है और खतरनाक है, बड़े धनी धनी लोग हैं। और वहां पर इस जीवन के साथ में साहस के साथ में एक दिन में बदल सके प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हो गए। ये दूसरों के लिए संभव बात नहीं था। ये ज्ञान हाथेली में लेकर के करना था। दूसरी बात, प्रभुपाद जी की इच्छा हुई स्वरूपगंज में भक्ति विनोद ठाकुर की समाधि वहां पर है और भजन कुटी है। वहां पर प्रभुपाद जी के बड़े भाई ललिता प्रसाद जी थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर जाने के बाद में उन्हीं के दखल में था, पुष्पुंज रूप में उनकी सेवा करते। तो उनकी इच्छा हुई ऐसा कोई नहीं है जो ये स्थान को ललिता बाबू से हटा करके और फिर हमारे अधिकार में ले आए। तो गुरु जी ने अभी छोटे थे उम्र के 24-25 वर्ष के जमींदार के लड़के थे, सब कानून जानते थे, बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े बैरिस्टर लोग उनसे कानून सीखने के लिए समझने के लिए आते थे। कोर्ट वोट में कहीं सीखा नहीं किंतु कितने थे धुरंधर। उन्होंने कहा ठीक है मैं आप आदेश बस दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, देखिए धर्म और धर्म की यही सब बातें बतला रहा हूँ। साथ ही साथ में गुरु जी गए और 20-25 लड़कियां जो अहिर गोप्स के होते हैं वो उनको दे दिया और कहा कि देखो कुछ करना मत, हम जैसा कहेंगे वैसा ही करना। वहां पर ललिता बाबू जी बैठे हुए हैं, प्रभुपाद जी के बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो कुछ गड़बड़ मत करना और सम्मान न होने पाए। तुम लोग यही जाकर के करना कि वहां पर जाकर के परस्पर लाठी अपने आप में लाठी चलाना और कहा जाओ हम ललिता बाबू जी को अभी देखते हैं, बस इतना ही कहना। और हाँ विनोद बाबू आ रहे हैं और बस खबर लग गई जो वो आ रहे हैं। और ये 20-25 आदमियों को लेकर के पहुंचे पद्मनाभ महाराजा, यू कैन कम हियर, एक रास्ता देकर के उनको ले आओ। जब लाठी परस्पर वो लोग चलाने लगे और दौड़ने लगे इधर उधर, तो ललिता बाबू जी ने देखा कि सर ये तो हमको मारेंगे, बस वहां से सब छोड़ छाड़ करके चले गए। और ये लोग प्रभुपाद जी को कहा कि फिर वो अपने आप दखल हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। और प्रभुपाद जी खुद आए और फिर से भक्ति विनोद ठाकुर जी का अभिषेक किया और उस भजन कुटी को अपने हाथ में लेकर के वहीं से प्रचार। आप लोग जानते हैं प्रभुपाद जी अपने हजारों शिष्यों को लेकर ब्रज मथुरा नवदीप धाम की परिक्रमा कर रहे थे। और उस समय में उनके साथ में आगे आगे हाथी पक्षी विग्रह चल रहा और सब बहुत बहुत लोग वहां पर थे, हजारों यात्री चल रहे थे परिक्रमा करते हुए और प्रभुपाद वाई डूइंग परिक्रमा ऑफ नौ दी विथ थाउजेंड टेलीग्राम दि विग्रह वॉज ऑन दी बैक ऑफ एलिफेंट एंड द इस प्रकार से हो रहा था और नवदीप के लोग बिगड़े हुए थे प्रभुपाद के विरोधी, ये दूसरे जातियों को भी ब्राह्मण बना करके उपनयन दे करके और वैष्णव बना करके कहता है ये ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, हमारी रोजी रोटी सब खत्म हुई और दूसरे जातियों को भी ब्राह्मण बनाता है और वहां के जितने वैष्णव थे वो भी बिगड़े हुए थे, अब हम लोगों को कोई नहीं पूछता, सब लोग मायापुरी जाते हैं कर्म से। वो कहता है ये गोसाइयों का संतान गोसाई नहीं, ब्राह्मणों का बेटा ब्राह्मण नहीं, गुण से होता है, यदि भक्ति है तो वही सबसे श्रेष्ठ है। इन्हें सब लोग बिगड़े हुए थे, जब वो प्रौढ़ाशाला में गए उस समय हजारों इन ब्राह्मणों ने और जाति वैष्णवों ने और गोस्वामियों ने उनके ऊपर में आक्रमण किया, छोटा बोतल छोड़ने लगे, गर्म पानी छोड़ने लगे, बड़े बड़े पत्थर इत्यादि उनके ऊपर में फेंकने लगे और उनको प्राण से मारने की चेष्टा की। उस समय गुरु जी क्या किया, देखा कि सब लोग भागे, जो जहां था वहीं से भागा, किसी को ये नहीं रहा कि प्रभुपाद कहां है या कैसे उनकी रक्षा हुई, सब लोग वहां से भाग गए। उस समय में गुरु जी प्रभुपाद जी को लेकर के बांसी में एक भक्त के घर में चले गए और उन्होंने जबरदस्ती प्रभुपाद को कहा सुन करके अपना जो सफेद ड्रेस था वो उनको पहना दिया और उनका दंड और उनका सन्नास का कपड़ा और सब कुछ लेकर के प्रभुपाद को चलाकी ससुराई के साथ में किसी दूसरे आदमी के साथ में मायापुर भेज दिया अपने सफेद कपड़े में और स्वयं वहीं रह गए। और उन प्रभुपाद को लोग खोज रहे थे उस समय, यदि पाते तो जान से ही मार डालते। तो ये उस समय में 25-26 वर्ष के लड़के और उस समय में प्रभुपाद जी का सन्यास, एक तरह से मैं कहता हूं कि प्रभुपाद जी ने उसी समय इनको सन्यास दे दिया, अपना दंड और अपना सारा प्रसादी वस्त्र सब दे दिया और बाकी क्या रहा, इसलिए गुरु जी को उन्होंने सबसे पहला उन्होंने उस समय में सन्यास दिया। और उस समय में फिर पीछे से पुलिस को पता लगी तो आकर के इनको लेकर के सब फिर मायापुर में, ये सब है हथेली पर लेकर के, ये भी बाह्य सेवा है किंतु है, ये भी बाह्य सेवा है, अंतरंग सेवा तो बहुत बहुत ऊपर है, जिसको सवेरे मैंने बताया कृष्ण प्रेम का दान करना ये बहुत ऊपर की चीज है। इस प्रकार से प्रभुपाद की सेवा की। आइए एक समय की बात है, पंडित जी अब आप चले जाइए, पंडित जी चले उसके पीछे एक समय में निम्बार्क संप्रदाय के यहाँ वृंदावन में पत्रिका निकलती है, अब शायद बंद हो गई है, सुदर्शन उसका नाम था, उसमें उन लोगों ने लिखा चैतन्य महाप्रभु जी केशव काश्मीरी के शिष्य थे और केशव काश्मीरी ने अपना शिष्य बना करके इनको गोपाल मंत्र दिया, वैष्णव मंत्र में उनको दी थी। जब वो प्रबंध आया, हमारे यहाँ से भागवत पत्रिका निकलती थी और उनकी वो आदान प्रदान दोनों में चलता था, तो जब वो आई तो मैंने प्रबंध को देखा, गुरु जी समय यहीं पर थे, यहाँ पर कमरा था, मैं उनके ले जाकर के गुरु जी को दिया, लिखे हैं पढ़ो तो मैंने पढ़ा, उनके शरीर में आग लग गई। कहे कलम लो और डिक्टेशन देना आरंभ किया। डिक्टेशन क्या दे रहे हैं? निम्बाश्रम प्रदाय नाम की कोई संप्रदाय नहीं है। निम्बाश्रम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। निम्बादित्य हमारा संप्रदाय है, चारों संप्रदाय के अंतर्गत केशव काश्मीरी नवदीप में महाप्रभु से परास्त हुआ और परास्त करके आग जल रही थी। वो और एक श्रीनिवास आचार्य दोनों न मिल करके कपोर संग्रह करके निम्बास नाम के एक व्यक्ति की कल्पना की और उनके नाम से एक भाष्य लिखा, पारिजात भाष्य, और दो चार पुस्तकें लिखी। किंतु इस निम्बास व्यक्ति का हमारे मध्वाचार्य भी, वो पुराने हैं, मध्वाचार्य से पहले के, कहते हैं कि ये निम्बास हैं। निम्बासित्य का समय है व्यास जी के समय, समसामयिक है। वो कहते हैं कि निम्बास और निम्बासित्य एक है किंतु एक नहीं है। और उससे तो मालूम पड़ता है कि निम्ब निम्ब का अर्थ अर्थात निम्बास नित्या नित्य निम्बासित्य मालूम तो पड़ता है। अब से एक इंद्र एक नहीं। यदि निम्बास नाम का कोई संप्रदाय होता तो मध्वाचार्य अपने कहीं पुस्तकों में निम्बाचार्य का कोई नाम उल्लेख करते, उनके भाष्य पारिजात का नाम लिखते, यहाँ तक कि रामानुज भी लिखते और कोई लिखे नाम लिखे। जीव गोस्वामी अभी सबसे आज से 500 वर्ष पहले हैं, जीव गोस्वामी जरूर लिखते क्योंकि सभी आचार्यों का खंडन बंडन उन्होंने किया है और हमारे संप्रदाय की स्थिति एकदम उन्होंने जो जो विरोधी हैं या जो जो जैसे हैं सबका उन्होंने उल्लेख किया है समय आचार्यों का। किंतु जीव गोस्वामी ने भी कहीं नहीं लिखा। और अभी हाल में 250 वर्ष पहले हमारे बंदे विद्याभूषण हुए हैं और सब आचार्यों का खंडन बंडन करके महाप्रभु के अचिंत भेदा भय की स्थापना की, किंतु उन्होंने भी कहीं उनका नाम नहीं लिखा। इसलिए निम्बाचार्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। यदि व्यक्ति है तो वो है निम्बादित्य, चारों संप्रदाय में से एक आचार्य और उन्हीं का भाष्य है और उसी को हमारे गौड़ीय वैष्णव ने उसको ग्रहण किया है। ये लेकर के कहा जिसे भी करके आज ही पत्रिका में दो और कल इसको छपवा दो। बस हमने बस उसको साथ ही साथ में उसको कर सकते हैं यहाँ से करवा करके झट उस पत्रिका को छपवा करके भेज दिया। जहाँ जहाँ पर भेजना है हमारा 500-700 हमारी पत्रिका उस समय जाती थी छोड़ी थी, वृंदावन गई, उनके हृदय में आग लग गई और उन्होंने हमको नोटिस गुरु महाराज जी के नाम से और हमारे संपादक में और गुरु महाराज जी उसके चलाने वाले दोनों के नाम से नोटिस आई कि हम लोग 500,000 रुपए का हरियाणा के रूप में आप पर हम केस करेंगे, मानहानि केस करेंगे। आप लोगों ने ऐसा क्यों लिखा कि निम्बार्क नहीं है और निम्बार्क संप्रदाय नाम की कोई चीज नहीं है। जब वो नोटिस आई तो गुरु जी ने वकील को बुला करके अकाल जी को और कहा जी से नोटिस का ऐसे दीजिए, ये हम लोगों ने जो लिखा है वो उसका एक एक अक्षर फर्सई दीर्घि और अनुस्वार तक परम शब्द है। आप हम लोग इसको कोर्ट में प्रमाण करेंगे, जो कैसा सत्य है हम लोग प्रमाण करना जानते हैं। और अभी भी कहते हैं निम्बास संप्रदाय निम्बास नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, कोई संप्रदाय नहीं, हम नहीं स्वीकार करते। आपको जो उसका मैं कभी 500,000 का 1,000,000 का हर जाना देकर के आप लोग जब वो नोटिस का उत्तर गया तो उनके वकीलों ने कहा कि इसको मत गड़बड़ कीजिए, यदि आप क्या केतु आप खोदते हैं सांप बढ़ाने में नहीं क्या एक कीड़ा होता है उसको खोदने में यदि सांप चूहा के लिए बिल में हाथ दिया उसमें से सांप निकल गया तो क्या होगा? तो ये बड़े भयंकर आदमी है, आप इसे पार नहीं पाएंगे, रुपए में भी पार नहीं पाएंगे और ये कानून खुद ही बैरिस्टर को ये सिखलाता है, इसलिए आप उसे मत लगिए नहीं तो भीषण अवस्था हो जाएगी। आप चुपचाप बैठ जाइए, पर चुपचाप आप लोग बैठे गए, कोई छे नहीं दिया। ऐसे प्रभुपाद के ऊपर में जो भी कोई किसी ने कटाक्ष किया हमारे संप्रदाय को, सब ऐसे धुरंधर बनते थे। इसीलिए हमारे परम पूज्य बात हमारे भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी जो कि विदेशों में गए थे पहले, उन्होंने गुरु जी के ऊपर में प्रसन्न होकर के इनको उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी? पाषंड गजैक सिंह, पाषंड गजैक सिंह पाषंड रूपी हाथी, और उसको काबू में करने वाला कौन? सिंह। जहां जहां प्रभुपाद के विचारों के ऊपर में, जहां जहां हमारे पौली संप्रदाय के विचारों के ऊपर में, जहां जहां किसी ने भी कटाक्ष किया थोड़ा सा भी, तो वो सिंह बन करके उनके अपने दसों नक्कों से उनके मंदिर निकल देते थे। युक्ति तो उनके बात बात में रहती थी, उनसे उनको कोई श्लोक याद नहीं रहता था, कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद बामन महाराज जी हमारे बड़े गुरु भाई जो अभी हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के आचार्य हैं, वो सूतिधर हैं। एक बार श्लोक देख लिया वो सादा जीवन भर करेंगे, ये उनको याद हो गया। तो उनके पास में बैठे रहते थे, जब भी कोई श्लोक की जरूरत होती तो गुरु महाराज आरंभ करते, तो वो पूरा जो तीन पाद है वो पूरा करते बामन महाराज, अने तो क्वचित कह देते, बस क्वचित। किंतु ऐसी झुकियां शास्त्र की, उनके मुख पर एकदम झरझर झरझर एकदम लगी रहती थी युक्ति। उनके सामने कोई युक्ति में ठहरता नहीं था। आप लोगों ने सुना ना, ये परमानंद पर एक भाषण देने के लिए कहा, तो ऐसा भाषण दिया पहले वंदना की ऐसे के श्लोक से, परमानंद माधवम मुखम करो दिवा जालम पंगो लंग गिरिम जत कृपा समहम वंदे परमानंद। वंदना की प्रभुपाद के एक शिष्य थे, प्रभुपाद की सेवा करते थे, रसोई बनाना कपड़ा पीसना सब कुछ करते थे, गुरु महाराज जी उनके साथ में रहते थे। तो एक बार दोनों में किसी बात के लिए मनोमालिन्य हो गया सेवा के विषय में, हम करेंगे हम करेंगे हो गया। तो दोनों में कुछ हो तो प्रभुपाद जी को पता लग गया, तो प्रभुपाद जी ने इनको कहा जैसे कुछ आप परमानंद के संबंध में कुछ बोलो, जब किसी में विवाद लग जाता तो ऐसा ही करते, कहे तुम इसकी प्रशंसा करो, तुम इसकी प्रशंसा करो। तो उनको उठाया तो उन्होंने सबसे पहला परमानंद माधव, माने क्या, माधव को जो परम आनंद देने वाले हैं ये परमानंद है। कौन? मुखम करो की बाचाल, मुख को भी बाचाल कर देता है, और पंगुम जो पंगु है उसको भी पर्वत हिमालय इत्यादि को लगवा देते हैं, असंभव को भी संभव करा देते हैं। कौन? भगवान के परम भक्त जो परमानंद, जो गुरु को वैष्णव को जो आनंद देना है ये परमानंद। इसके अर्थ भी बहुत स्वरूप है, किंतु ये गुरु जी का मतलब ये था। परमानंद माधव तो ठीक है, माधव कैसे है? परम आनंद स्वरूप, ये बात ठीक है, किंतु उनका तात्पर्य यह माधव के लिए नहीं था, परमानंद के लिए था। इसलिए परमानंद पर जोर देकर के उन्होंने कहा ये परमानंद कौन है जो गुरु जी के लिए प्राण देने वाले हैं, गुरु जी के सब समय सेवा में रहते हैं। क्योंकि तो आज ही रात में परमानंद जी कहीं से आएंगे, प्रभुपाद 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 बिना कपाट खुलवाए हुए नहीं मानिए, और फिर जाकर के घर में सबके प्रभुपाद जी के बारे में। इसलिए उनकी पहली वंदना परमानंद के संबंध में, और शास्त्रों से कहां कहां से, ओ भाग्यम ओ भाग्यम नंद गोप्रिय शाम परमानंदम स्मरण पूर्ण ब्रह्म सनातन, ये सब। और केवल वही नहीं, वेदांत से लेकर के वेदांतिक व्याख्या आरंभ कर दी, आनंदमयो अभ्यास आनंद, ये परमानंद नहीं होने से परमानंद ये कहां से आएगा आनंदमय अभ्यास। इसे इनकी अनुगत्य में रहने से तो गुरु जी की सेवा होगी और वैष्णव की सेवा होगी, भगवान की सेवा होगी। इतना प्रभुपाद वहां पर बैठे जैसे सुन करते और परमानंद जी तो रोने लगे, उनका सब जितना जो था वो सब बह गया। फिर प्रभुपाद ने अपने वेदांत की सारी पुस्तकें, और कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा मैं नहीं जानता, पर सारी पुस्तकें उसी समय में गुरु जी गुरु जी को दी, अंत तक उनकी पुस्तकें। उसमें से बहुत से कुछ हमारे यहाँ मथुरा में अभी हम लोग कुछ कुछ सब रखे हैं। एक समय में प्रभुपाद जी के ऊपर में
एक आदमी ने कटाक्ष किया, कौन सा किसने कटाक्ष किया, भक्ति विनोद ठाकुर के एक शिष्य, उनका नाम सजिया के सावरी, भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रभुपाद तो शिष्य नहीं है, और एक थे बहुत संगीतज्ञ संस्कृत के धुरंधर विद्वान परम भक्त थे। तो वो लोग राज इत्यादि राज पंचाध्याय इसकी आदि के अतिरिक्त और कुछ पाठ नहीं करते, किसका अधिकार हो या न हो, और वही बाबा जी देते थे। तो उन्होंने गुरु जी के प्रभुपाद के संबंध में कुछ अंत संग लिखा, ये लोग केवल आम की गुठली चूसते हैं, रस नहीं, इनको रस का पता नहीं है, रस किसको करते हैं, और ये लोग तत्ववादी हैं, जिसको भागवत में कहा गया ज्ञाने प्रयासों के पास जन्म मिलते हैं। प्रभु उनके उनके जितने भी शिष्य हैं या भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी है, ये रस से इनका कोई भी संबंध नहीं है। और कुछ और भी लिखा था, तो गुरु महाराज जी ने हमारी गौड़ीय पत्रिका में एक प्रबंध दिया, वो प्रबंध था हम पांच प्रबंध देंगे, तो प्रबंधों की सूचना की, और उसमें लिखा शौर्या शाला जीते गलत रावण सीता हरण, और ऐसे ही पांच हमको याद अभी नहीं। मतलब क्या शौरी शालन माने क्या, शौरी एक आश्रम है, वो प्रभुपाद के विरोधी है, प्रभुपाद की बहुत निंदा करते थे, प्रभुपाद जी उनके कट्टर विरोधी थे, जो जिसको योग्यता नहीं है, आधार नहीं है, और सब रात्रिजा पंचाध्याय का अनुशीलन करेंगे और सबको बाबा जी वेश दे देंगे, इसलिए उनकी कुछ आलोचना करते, तो वो बिगड़ करके इनके संबंध में लिखा। तो गुरु जी ने कहा कि सावली शाला जीते गलत माने क्या, जैसे कि शाला होता है ना, गाली होती है ना, तो एक गाली ही दी हुई, और एक शाला में होता है भवन, सावली के शाला के जीत में गलत माने उसकी नींव में ही गलत है, और कौन से प्रबंध का नाम लिखा, बस गुरु महाराज जी के ऊपर ने 5,00,000 रुपए का मान हानि का केस कर दिया मेदिनीपुर में। हम लोग इधर में परिक्रमा आए थे, ब्रजमंडल की परिक्रमा, और उस पर वो केस चालू कर दिया, और हम लोग नहीं थे, पुलिस में भी बड़ी बड़ी अफसरों में उनकी परिचय थी, वहां का प्रेस इत्यादि और मठ को ही कुर्ती कराने का आदेश भी दे दिया, किंतु किसी प्रकार से पता लग गया हमारे पूज्य बाजनाथ सिंह महाराज जी उनको किसी प्रकार से बंद कराया। तब हम लोगों ने मैंने कहा गुरु जी से इसे जितना भी खर्च हो कलकत्ते के सबसे अच्छे बैरिस्टर को आप कीजिए, नहीं तो बड़ी सारी गड़बड़ी होगी, हम लोग मुख निकालने के लिए लायक नहीं रह गए। गुरु जी ने कहा ऐसे 10-20 मामले हमारे दोनों तरफ में झुलने से भी हमको कोई चिंता नहीं है, तुम लोग निश्चिंत रहो। तो हम पांच आदमियों पर केस हुआ था, गुरु महाराज जी, नरसिंह महाराज जी, पूज्यपाद बावन महाराज जी, त्रिविक्रम महाराज जी, और हमारे ऊपर, हम लोग संपादक थे। वहां पर जब केस हुआ तो कलकत्ते के सबसे अच्छे वकील को उन्होंने दिया, एडवोकेट बहुत उसका नाम था, उसने कहा कि आपके लिए हम एक पैसा नहीं लेंगे, और ऐसे ही गया किसीपुर में और एकदम खड़े होकर के उसने कहा कि हम इसलिए आए हैं, हमको सिद्ध करना है कि सावलिया जो आश्रम है ये सचमुच व्यभिचार का अड्डा है, और भजन से इनका कोई भी संबंध नहीं है, हम इस सिद्ध करने के लिए सिद्ध करके जाएंगे। तो वहां के जो बड़े जिसके कोर्ट में हो रहा था जज, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप लोग तो सन्यासी हैं, आप लोग को सहिष्णुता से रहना चाहिए, और जो हो गया सब भूल करके आप लोग क्षमा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग सन्यासी हैं, यदि हम लोग दोषों को नहीं पकड़ेंगे तो दूसरा कौन पकड़ेगा, तो समाज का संस्कार किस लिए होगा? महाप्रभु के शुद्ध भक्ति का प्रचार कैसे होगा? इसलिए हम इसके लिए आए हैं, तो हम लोग तो जरूर करेंगे। तो ये लोग केस हटा ले, हम कोई बात नहीं है, केस तो इन लोगों ने किया है। अंत में उन्होंने परामर्श कर दिया जैसे कि आप केस हटा लीजिए, जैसा ये कहते हैं वैसा कर लीजिए, अन्य तो बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी। अंत में वो इसको हटाया और क्षमा मांगा, तो गुरु जी को उसने कहा कि इतना कड़ा नहीं देखिए। उन्होंने कहा कि ये तो हमारा अधिकार है लिखने का, ये लोग ऐसा ना करें हम कभी नहीं लिखेंगे। ऐसे थे अद्भुत, ये तो हुआ इधर। और प्रभुपाद जी के लिए क्या किया? यदि वो नहीं उस समय में आते प्रभुपाद जी के जाने के बाद में, तो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय बिखर चुका था, एकदम संपूर्ण रूप से बिखर गया था। गौड़ीय पत्रिका मासिक और ये सब बंद हो गई, हारमोनियम से बंद हो गया, भागवत पत्रिका हिंदी में थी वो बंद हो गई, प्रचार बंद हो गया, नोटिस धाम परिक्रमा बंद हो गई। हमारे गुरु महाराज जी सबसे पहले उन्होंने नवदीप धाम परिक्रमा आरम्भ की। एक दो वर्ष परिक्रमा हुई थी कि हम लोग पूज्यपाद श्रीकम महाराज जी आ गए, हम लोग आ गए, और फिर धीरे धीरे प्रचार आरंभ हुआ, गौड़ीय पत्रिका छपी, इसके बाद में परिक्रमा आरंभ हुई। फिर हम लोग गुरु जी के साथ साथ में सारे विश्व में, सारे भारतवर्ष में तीर्थों में जाते, वहां पर महापुरुष जी की कथा का प्रचार करते। धीरे धीरे भागवत पत्रिका भी आरंभ हुई, धीरे धीरे जैव धर्म सबसे पहले प्रकाशित हुआ, उसका चारों तरफ में वितरण हुआ। इस तरह से भारतवर्ष में सर्वत्र गुरु महाराज जी ने प्रचार आरंभ किया। उनकी देखा देखी पूज्यपाद भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी भी वहां से आरंभ किए, पूज्यपाद भक्ति माधव गोस्वामी महाराज जी उन्होंने एक पत्रिका आरंभ किया, अभी चल रही है, क्या नाम है उसका, धन्यवाणी। और धीरे धीरे सब लोग उत्साही होकर के अलग अलग मठ स्थापन करके और चारों तरफ में प्रचार आरंभ किया। एक तरह से ये अच्छा हुआ, लोगों में बंधुत्व भी बना रहा, केवल बात बाजार से इनका बंधुत्व नहीं रहा उस समय, क्योंकि प्रभुपाद के विरोधी हो गए वो लोग। उन लोगों ने कहा अनंत वास्ते और सुंदरानंद विद्या विरोधी, प्रभुपाद को छोड़ करके दूसरे बाबा जी से बाबा जी का वेश लिया, और प्रभुपाद के प्रचारित जितने भी ग्रंथ थे उन ग्रंथों को गंगा में डुबो दिया। ये प्रभुपाद राग मार्ग के भजन करने वाले नहीं थे, विधि मार्ग के थे। इसके बाद में गुरु महाराज जी ने उनके विरुद्ध भी अचिंत भेदाभेद नाम का एक ग्रंथ प्रबंध लिखा, गौड़ीय में छपा। अभी हम उसको पूरा करने वाले हैं, अभी पूरा नहीं हुई है। मायावाद की जीवनी तो छप चुकी है, किंतु अभी बहुत से कुछ ऐसी चीजें हैं जो गुरु महाराज जी की जो बाकी चीजें हैं, हम लोग उसको पूरा करेंगे। इस तरह से प्रभुपाद के विचारों पर जहां कोई कुठाराघात किया, सिंह की भांति उसका उन्होंने खंडन बंडन करके और अंत में उसकी प्रतिष्ठा की। तो उस समय यदि गुरु महाराज जी नहीं आते तो ये प्रचार ही बंद हो जाता। गुरु महाराज ने खुद हमसे बतलाया था और भी लोगों को बताया कि नहीं मैं नहीं जानता, ये प्रभुपाद ने हमको सपने में तीन बार आदेश दिया, ये संन्यास लो, संन्यास लो, हमारा ये सब बिगड़ रहा है, कोई प्रचार नहीं कर रहा, वे और जल्दी से प्रचार। तो अंत में तीसरे सपने के बाद में उन्होंने परम पूज्यपाद अपने गुरु भाई परम पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी से कटवा में, जहां पर महाप्रभु जी ने संन्यास लिया, वहां पर संन्यास किया और संन्यास लेकर के प्रचार आरम्भ कर गंगा के दोनों किनारे में, मेदिनीपुर में, इधर में बंगाल में, चौबीस परगना में, कहां कहां प्रचार में जाते। हम लोग उनके साथ में चल नहीं पाते, मैं 8 मील 10 मील की दौड़ में सब समय फर्स्ट होता था, 8 मील 10 मील लॉन्ग जम्प हाई जम्प साइकिलिंग क्या क्या, किंतु उनके साथ में मैं चल नहीं पाता। वो सवेरे से आरंभ करते और शाम तक महाप्रभु जी के चावल के भिक्षा के लिए उनका एक जोड़ा जूता मेदिनीपुर के वो खुद कहते उनका जूता खत्म हो जाता था, वहां नया जूता, जूता तो नहीं चप्पल जैसा, हमारे पुराने विद्या का गरीब व्यक्ति बाबू महाराज खुद तेज चलते थे, हम दोनों पिछड़ जाते हैं। तो वो खड़े होकर के आगे से देखते हैं, जैसे ये आ नहीं रहे, और हमको अभिमान था कि मैं इतना तेज चलने वाला हूँ, सब अभिमान कहाँ दूर हो जाता था। कितने कठोर परिश्रमी थे हम लोग के साथ में, जबकि गए वहाँ बद्रीनारायण और कहाँ कहाँ पहाड़ियों पर सबसे पहले चलते और हमको जगाते, और मैं सबको उठाता, मैं उठ करके फिर सो जाता, फिर आते देखने के लिए। अरे बहुत न अभी सो रहा, अभी सो रहा है, अब तो जाने का समय हो गया। फिर हम लोग उठ करके सब ठीक ठाक करके, कुछ बात बम महाराज उनके लेकर के गए, उनके बिना उनका काम नहीं चलता। और एक बार बोल दिया, फिर उसको देख कर करके कॉरेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया बस से, और एक बार उन्होंने जो बोल दिया वो बोल दिया, बस प्रेस में सीधा। हम लोग 10 पुस्तक लेकर के 10 घंटे में 20 घंटे में एक प्रबंध देते उनका ऐसा नहीं। परिक्रमा हो रही है, 10,000 आदमी एक साथ में बैठे हुए हैं, और सारी व्यवस्था करनी है, बम महाराज जी आ गए जैसे अंतिम प्रबंध देना है, नहीं तो छपेगा नहीं, तो वो वहां पर कल कैसे देने मीटिंग में बनी, तो उसके लिए बैठे रहते। और उसी के बीच में कदाचित अच्छा तो लिखो, और देखो कितने आदमी बैठ रहे हैं, कितने उनसे बात कर रहे हैं, कि और उसमें से झट 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 करके 4-5 पेज एक साथ, ये सब अद्भुत क्षमता, ये संभव नहीं। इसलिए उनकी कि हम क्या कहें, ये जो कहा ये तो देखे जाने वाली बातें हैं, हम लोग देख सकते हैं, किंतु देखने वाली चीज नहीं, वो क्या चीज है, उनके गुरु के प्रति जो निष्ठा और सेवा की भावना, ये कैसी। उन्हीं के लिए सफेद कपड़ा धारण करते हैं, उन्हीं के लिए संन्यास लेते हैं, उन्हीं के लिए जीते हैं मरते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सही बदला है ना, न धर्मम न धर्मम। वो चीज क्या है, हम लोग जानते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, अन्नाभिलाषिता संयम ज्ञान कर्मार्थ अनुकूल्यम कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। हम जानते हैं गुरु जी की सेवा करने से, वैष्णवों के प्रति आदर भावना रखने से भक्ति होती है, भक्ति।